इंतजाम साहब, ये खुदकुश हमले जायज हैं नाजायज हैं, किस सूरत में जायज हैं, अगर आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें शरई तौर?
मैं तो समझता हूँ किसी सूरत में भी जायज नहीं है। और ये बात जो है आपको समझ नहीं पड़ेगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, ये फलस्तीन के इलाके में भी होते हैं, इंडिया के अंदर भी होते हैं, श्रीलंका में भी होते हैं, और सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं होते। आपको हिंदू भी ऐसे हमले करने वाले मिल जाएंगे, आपको सिख भी ऐसे हमले करने वाले मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी के सानहे के अंदर जो मुलव्वस था बंदा मुसलमान तो नहीं था। इसी तरह आपके सामने की बात है कि जो आयरिश लिबरेशन जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी इस किस्म के वाकियात हुए हैं। तो इसका मतलब यह कि ये हमलों का ताल्लुक मदद से सिर्फ नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, इसका ताल्लुक आपके जज्बात से हो सकता है, आपके साथ महरूमी से हो सकता है, आपके अपने माइंड सेट के साथ हो सकता है, लेकिन मदब का इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता पाकिस्तान में कोई एक मदरसा ऐसा नहीं जिसको पिन पॉइंट करके ये बात कह सकें कि इसके अंदर कोई ऐसी तरबियत या तालीम दी जाती है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है। अगर कोई ऐसा मदरसा मौजूद है तो मैं समझता उसको मंजरेआम पे लाना चाहिए, उसके जिम्मेदारान को, उसके खुताबा को, उसके साथ ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अजम्पशन की बुनियाद पर यह बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए,
चाहिए।
कंक्रीट एविडेंस की बुनियाद पर आगे बढ़नी चाहिए।
सर, आपने कहा खुदकुश हमले हराम है। अब अगर इन कार्रवाइयों पे जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हुई हैं, हुकूमत और रियासत ऑपरेशन करने का सोचे, आप उस ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, मुखालफत करेंगे इब्तिसाम सर?
मैं ये बात समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो लोग ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, हिमायत करते हैं, उनमें से कोई एक बंदे का मौका उसकी हुकूमती रिट को बहाल करने के हवाले से नहीं है। सिर्फ ये बात होती है कि मजीद कुछ तो हून जो है उसको रोकने के लिए कौन सा तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर है। कई मरतबा हम ये बात समझते हैं, कई साल से कॉन्टिन्यूसली आप पावर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुजाकरात के जरिए आप उन बोर्ड उन लोगों को ले आते हैं जिनके साथ रियासत का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये बात का मकसद कोई ये नहीं है कि आप उनको इनकरेज करना चाहते हैं या आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बल्कि बेहतर यह स्टडी समझी जाती है कि अगर आप काउंटर प्रोडक्टिव जो चीज हो उसको इस्तेमाल करें। अगर मुजाकरात से खून रुक सकता है मुजाकरात करें, अगर किसी और तरीके से खून रुक सकता है वो तरीका अख्तियार करें, लेकिन रियासत जो भी तरीका अख्तियार करे फिर उसको जो है पूरी कंसेंट्रेशन के साथ अख्तियार करे, उसमें कभी बैक फुट कभी फ्रंट फुट के ऊपर ना जाए और तदब्दुब का शिकार ना हो।
ठीक है, मुफ्ती नईम साहब आप क्या कहते हैं सर, खुदकुश हमले हराम है या जायज है किसी सूरत में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में वाकयात हो रहे हैं, कभी शियों को मारा जा रहा है, कभी सुन्नियों को मारा जा रहा है, गुज़िश्ता दिनों में मौलाना उस्मान यार को शहीद कर दिया गया और ये मस्तून का वाकया हुआ, यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हुए। मैं समझता हूँ कि ये जो कत्लो गारत गिरी है, कत्ल करने वाला जो दहशतगर्द है, उसका किसी मसलक से ताल्लुक नहीं होता। अगर बैंक में कोई आदमी डकैती करता है तो आप कभी उसको ये नहीं कहते कि ये शिया है जिसने डकैती की, सुननी है, बल्कि आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि दहशतगर्द है, डाकू है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको किसी मसलक से मुंसलक करना ये और ज्यादा दहशतगर्दी को फैलाने वाली बात है, बल्कि मुतलकन ये कहा जाए कि ये दहशतगर्द है, इसका कोई मजहब नहीं है, जहां से भी हो इसको पकड़कर हुकूमत जो है सजा दे, नंबर एक। नंबर दो, आपने सवाल किया खुदकश करना हराम है। पहली बात तो ये कि खुदकश करना, ये जैसा कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा, खुदकशी सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, मुसलमानों में ही नहीं, बल्कि और कौमें भी खुदकशियां करती रही हैं और करती रहती हैं, और ये खुदकशी करना मुतलकन तो आप हराम नहीं कह सकते, इसलिए कि आपने देखा 1965 के अंदर जब हिंदुस्तान से लड़ाई हुई, पाकिस्तान की फौजियों ने अपने आप को हमला करके जो इंडिया के टैंकों को रोका, या फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं उसके लिए जो है अगर मुसलमान जो है उनके पास कोई हथियार नहीं है वो इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए कोई हराम नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेगुनाह लोगों को मारना, चर्चों और इमाम बारगाहों को मारना, बसों पर बेगुनाह लोगों को पर खुदकश हमले करना, इसको कोई मजहब शरण इजाजत नहीं देता।
सर, रियासती फौज पर हमला करना, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हमारी लड़ाई है इनके साथ, जो अगर रियासती फौज के पर वो हमले कर रहे हैं उसके बारे में शरीयत क्या कहती?
देखिए, बात ये है कि रियासती फौज पर हमला करना हो, खुदकश हमला मुतलकन किसी रियासत पर हमला करना, ये रियासत पर रियासत बनाने वाली बात है, कतन इसकी इजाजत नहीं है कि एक रियासत मौजूद है और उसके अंदर आप अपने रिट कायम करने के लिए फौज और पुलिस और रेंजर्स पर हमला करें, ये किसी सूरत में भी इजाजत नहीं है, इसलिए कि रियासत के अंदर रियासत बनाना ये हमारे मुल्क को अपने मुल्क को तबाह करने वाली बात है, इसमें किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं।
और अगर ऑपरेशन हुआ तो आप हिमायत करेंगे बनाना इसकी, मुफ्ती साहब?
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی حمایت کریں گے کہ کسی طرح یہ دہشت گردی ختم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ امریکہ نے 12 سال لڑائی کی اور بالآخر وہ مذاکرات پر آمادہ ہوا اور 38 ممالک جو ہے وہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے. ہماری حکومت جو ہے مذاکرات کرنے کے اندر مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے, آج مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بیان جاری کیا کہ میرے کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مذاکرات کرو, جب میں نے ان سے بات کی اور مذاکرات کے لیے میں نواز شریف صاحب کو فون کر رہا ہوں تو میرا ٹیلی فون ہی انہیں اٹھا رہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر حکومت مذاکرات میں مخلص ہے اور دیانتداری سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایک کوشش کرے, مذاکرات کے ذریعے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو قتل و غارت گیری نہیں ہوگی, اور اگر آپریشن کے ذریعے حل ہوتا ہے تو اس کے اندر تو قتل و غارت گیری کے بڑے چانس ہیں, پورے ملک کے اندر جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم پہلے مرتبہ میں مذاکرات کو ترجیح دیں گے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, پہلی بات تو ابھی تک مذاکرات ہوئے ہی نہیں,
اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپریشن. ٹھیک ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد مفتی نعیم مفتی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.